శ్రీశాసనం నమః తమే తారాయ స్వానుభూత్యాచకాంతకే విశ్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరస్థితే సర్వభావాంతరస్థితే.
आचार्य कुंड स्वामी की यह परम पवित्र वाणी समय सार नामक ग्रंथ है। समय वाने पदार्थ कहा था और सारभूत उसमें भगवान आत्मा है, तो यह ग्रंथ आत्मा के स्वरूप को बतलाने में सारभूत होने से अपने नाम को सार्थक करता है, क्योंकि इसमें जो चर्चा है वो चर्चा किसी और की नहीं है, अपनी चर्चा पसंद ही आनी चाहिए। अपनी चर्चा चले और पसंद नहीं आए तो इसका मतलब या तो दिमाग ठीक नहीं, क्या कहोगे आप बताओ। किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो और उसको समझ में नहीं आ रही है या उसका दिमाग बिगड़ रहा है, इधर उधर उपयोग है, इसका मतलब वो समझ नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। ऐसे ही यहाँ जय भगवान आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं, उसका पर पदार्थों से असंग पना बताया जा रहा है। जय भगवान आत्मा पर पदार्थों से अलिप्त है, असंग है, पर पदार्थों से अछूता है, अनटच रहता है, अस्पर्शी है। क्यों नहीं छूता पर पदार्थों को? क्योंकि एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती। यह तर्क दिया यहाँ पर, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती, इसलिए दो वस्तुओं में आपस में प्रवेश भेद देखा जाता है। और जिन दो वस्तुओं में आपस में प्रवेश भेद हो, इसका मतलब वो भिन्नता है, एक दूसरे की कर्ता भी नहीं हो सकती। मैं शरीर का कर्ता कब हो सकता हूँ? जब ये दो एक हो, मैं और शरीर बोलने में ही दो बोल रहे हैं। यहाँ संवर अधिकार में ये भेद विज्ञान कराया है कि तुम अपने मूल स्वरूप तक पहुंचो। भेद माने तो होता है अलग करना और विज्ञान माने होता है ज्ञान करना। तो भेद विज्ञान माने जो अपना नहीं है उसको अपने से भिन्न जानते हुए अनुभव करना, उसका नाम भेद विज्ञान। भेद अकेले भेद की बात नहीं है, भेद का ज्ञान और अकेले भेद विज्ञान भी नहीं, उस भेद विज्ञान के साथ में निज में निज बुद्धि जुड़ी हुई है। दो वस्तुएं न्यारी न्यारी है, ये अलग है और ये अलग है, हमने जान लिया, अब अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर दिया हमने। अब इनमें अपनी कौन सी है और पराई कौन सी है, ये जानना जरूरी है। भेद तो कर दिया, भेद करने का मतलब बंटवारा करना, बंटवारा कर दिया, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। इस बंटवारे में अपना हिस्सा कौन सा है ये तो बताओ। तो यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि भैया जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हारा हिस्सा ऐसा है जो अनंत गुण संपन्न है, हमारा हिस्सा ऐसा है जो अनंत वैभव संपन्न है। अपने हिस्से में वैभव भरे, अपने हिस्से में रत्न भरे, कि साहब अपने हिस्से में माने अपने प्रदेशों में अपने स्वरूप में विकार भी तो था, वो भी तो अपने में ही था। नहीं नहीं, वो विकार तो नष्ट होने वाला है, वो विकार अपनी संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है अपनी। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी? कि जो परमानेंट हो वो प्रॉपर्टी कहलाती है। अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ये पुस्तकें, टेबल, कुर्सियां, ये छोटी छोटी सी चीजें, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं। मकान यदि बिकता है, मान लीजिए, तो मकान इस आधार पर नहीं बिकता कि इसमें कितनी कुर्सियां हैं, कितनी डिब्बियां हैं, कितने डब्बे हैं, क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ये सब चलायमान है, चल संपत्ति को संपत्ति नहीं माना जाता, करंट असेट को असेट नहीं माना जाता, सिर्फ असेट अपनी संपत्ति, करंट असेट को आनी जानी है, अभी है अभी नहीं है, फिलहाल इतने चश्मे भी है इस मकान में, तो क्या लेना देना है भैया? ये नहीं साहब, इतने तो पलंग वलंग लग रहे हैं और है तो आखिर इनकी वैल्यू तो बढ़ रही है, कुछ कम नहीं है, यहाँ तक कि कई बार तो मकान की कीमत भी नहीं होती, खाली जमीन की कीमत होती है। साहब इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ नहीं है इसका, अब कदाचित उस जमीन और मकान की कीमत हो गए तो दरवाजे खिड़कियों की तो कोई कीमत होती है, टेबल कुर्सियों की चद्दरों की तो कोई कीमत होती नहीं है। किताब इतने बर्तन भी हमने छोड़ दिए, ये देखो इतने बल्ब भी लगे हैं, पांच सात तो बल्ब लगे हैं हमारे मकान में, क्या कर रहा है? समझ रहा है? ये देखो करोड़ों का मकान बेचता है और दस रुपए के बल्ब की बात करता है। ऐसे ही हमारी असली संपत्ति कौन सी? बड़े मेरी संपत्ति में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ऋषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, देवी शक्ति, ये सब मेरी प्रॉपर्टी में, ये सब शक्तियाँ गुण है, धर्म है, अस्तित्व वस्तुत्व नास्तित्व आदि है, सामान्य गुण है, विशेष गुण है, ये सब मेरी प्रॉपर्टी में है। बोले और मेरी प्रॉपर्टी से बाहर, बोले बाकी जो क्रोध मान माया लोग आदि के हैं, ये सब मेरी प्रॉपर्टी से बाहर। जब मेरी संपत्ति में मेरे घर में जन्म लेने वाले उस क्रोध का ही कुछ अधिकार न हुए तो शहीद का कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति ये कहे कि चलो उनके यहाँ दान लेने के लिए चलते हैं, तो दूसरा व्यक्ति ये कहता है उसके पास दान लेने के लिए जा रहे हो, उसी कौड़ी नहीं मिलेगी, उसका तो बेटा 2 रुपए मांगता है तो नहीं देता हो। जो अपने बच्चे को नहीं देता हो वो दूसरे को उधार होकर के कैसे दे सकता है? तो हम ये कह रहे हैं कि अपने घर में उत्पन्न हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम ही जब अपने नहीं हो तो शरीर अपना कैसे हो सकता है, संयोग अपने कैसे हो सकते हैं, परद्रव्य अपने कैसे हो सकते हैं? तो ये कहता है कि साहब देखो परद्रव्य अपने तो नहीं हो सकते, लेकिन परद्रव्य का ज्ञान तो हो सकता है, परद्रव्य का ज्ञान तो हो सकता है। तो कहते हैं ये जो पर का ज्ञान तुझे दिखाई देता है, ये ज्ञान पर का कभी होता ही नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। हमें क्या लगता है पर का ज्ञान, इसका ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, बिजनेस का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, किस किस चीज का ज्ञान है? ज्ञान किसका है बताओ?
ज्ञान का,
ज्ञान तो ज्ञान का है विकास, हम आपको कई जगह शास्त्र में लिखा हुआ बतला दे रहे हैं, पर का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान इंद्रिय का नहीं। हम ये वाक्य आपको कई जगह बड़े बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स में दिखा सकते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान, ये वाक्य मिलेगा क्या नहीं? सेंटेंस मिल सकता है भाई साहब, लेकिन इस वाक्य का अर्थ ये है कि कंप्यूटर कंप्यूटर में, ज्ञान ज्ञान में, और वो कंप्यूटर की झलकन जब तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में बनती है तो कंप्यूटर की सापेक्षता से उस ज्ञान पर्याय को कंप्यूटर का ज्ञान कहने में आता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि ज्ञान पर्याय ज्ञान की है, हर पदार्थ की होती है, इसलिए उपयोग में उपयोग कहना चाह रहे हैं, उपयोग पर पदार्थों में नहीं। ये जो संबर अधिकार की गाथाएं अपनी यहाँ चलती है 181, 182, 183 नंबर की गाथा, जिन मूल गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने उपयोग में उपयोगपन की बात कही, ये क्या कहना चाहते हैं? उपयोग में उपयोग का मतलब क्या है? ज्ञान में ज्ञान पर्याय, महाराज आप संबर बताने वाले थे, कहाँ उलझा रहे हो हमारे? हमने प्रश्न ये किया था संवर कैसे होता है तो बताओ, हमने ये प्रश्न किया था पर आप कैसे उपयोग में उपयोगे, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिमाग चेहरा आउट हो गया आपका। प्रश्न कुछ पूछते हैं उत्तर कुछ देते हैं, ऐसी हालत लगती है कि नहीं। हमने ये पूछा कि आप कहाँ रहते हो, बोले मैं सिकारी दो आत्मा हूँ। अरे आप क्या हो उससे क्या मतलब, आप रहते क्या हो ये बताओ ना, मुझे एड्रेस चाहिए। ऐसे मूर्खता लग रही है, दुनिया में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है जो प्रश्न को न समझे और उल्टा सीधा जवाब दे दे। कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मूर्ख नाम पूछ रहा हूँ तो 5 लाख रुपए बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अब ये यहाँ जब हम कुंदकुंद स्वामी से मिले और हमने कहा महाराज आपके चरणों की शरण में आए हैं और हमें पता लगा है कि संवर प्रकट करने का उपाय आपसे अच्छा बतलाने वाला इस भारत भूमि का नहीं है, हमने आपकी इतनी तारीफ सुनी है और पता है हमने तो ये भी सुना है कि आप विदेश क्षेत्र जाके आए हो, हमने ये भी सुना है कि आप सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए हो। ये सही सुना है बच्चा, हूं क्या कहता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वे कहें इतने सारी बात सुनकर के मैं तो आत्मा हूं, तो कहेंगे आप विदेश क्षेत्र जाकर के आए हो क्या, कहेंगे उपयोग में उपयोग में, आप सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए हो ना भगवान। हे आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आप विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए हो ना, ये जवाब क्या देते हैं, अब जवाब क्या आना चाहिए, हाँ जाकर के आए हैं या नहीं नहीं जाकर के आए, ये जवाब होना चाहिए ना। वो जवाब क्या देते हैं, उपयोग में उपयोग, क्या कहना चाह रहे हैं, ये उपयोग में उपयोग है कहकर के कहना चाह रहे हैं कि सिमंदर भगवान के पास में गए तब भी उपयोग में उपयोग था, उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे थे तब भी उपयोग में उपयोग था और अभी भी उपयोग में उपयोग है। इसकी क्या उपयोगिता है, उपयोग में उपयोग होता है तभी संवर होता है। भाषा नहीं समझ पाता है शिष्य, शिष्य नहीं समझ पाया कि उपयोग में उपयोग का मतलब क्या है, मैंने तो बात कुछ और कही थी और ये बात कुछ और करता है, लगता है दिमाग ठीक नहीं है इसका। मुझे वो जावत का प्रसंग याद आता है, कौन सा जावत जाति का एक पैरट था, जंगल में पैरट पकड़ने वाला व्यक्ति वो पहचान गया कि यार ये तो बहुत बहुमूल्य है, तो इससे अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बच्चा है बोलता नहीं। जावत एक पैरट की ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी जाति होती है, जिस जाति वाले पैरट थोड़े समय बाद में बोलने लगते हैं मनुष्यों की जैसे बात करने लगते है, ऐसी क्वालिटी होती है। और अच्छे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे आज तुम्हारे, तो बहुत कोशिश की उसने, किसी ने अच्छे दाम दिए ही, किसी को भरोसा ही नहीं, राजा के पास में ले गया कि राजा तो कम से कम समझदार है अच्छे दाम देगा, राजा को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो हम इसके अच्छे दाम देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोजाना हमारे यहाँ दरबार के चक्कर लगाने पड़ेगा, पैसा मुंह मांगा देंगे हम और तुम्हारे घर का पता यहाँ लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि यदि कदाचित ऐसा नहीं हुआ तो भाई तुम्हारे को जेल में डाल देंगे धोखाधड़ी के इंजाम में। नहीं महाराज, बहुत विश्वास से कहता हूँ, अनुभव है मेरे को, जिंदगी निकल गई ये काम करते हुए, बिल्कुल मनुष्य जैसे बोलेगा, राजा ने डाल दिया उसको पिंजरे में डाल दिया, बिठा दिया, निकल गए मैंने दो मिनट, बोलने लगा मनुष्यों की जैसे बोलने लगा, टेली पंचेंद्री तो होता ही है, बात भी करने लगा मनुष्यों की जैसे बोलने भी लगा, राजा को भी बड़ा मजा आने लगा, राजा से दोस्ती हो गई माने। एक बार ऐसा प्रसंग बना जब नगर में कोई मुनिराज आए, नगर में मुनिराज आए तो राजा को भी लगा अपने को दर्शनों के लिए जाना चाहिए, ठीक है, राजा तैयारी कर रहा था दर्शन के लिए जाने के लिए। राजा निकल रहा था तो पेरेंट्स ने कहा, राजन सुना है आप मुनिराज के पास जा रहे हो? हाँ भाई मुनिराज के पास जा रहा हूँ। बोलो क्या बात है? कि एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। कि क्या पूछना है? कि मुक्ति नु उपाय सुनछे, मुक्ति का क्या उपाय है ये पूछ लेना। और अच्छी बात है, मुक्ति का उपाय पूछ रहा है सबने ग्रहण ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग है, फिर सूत्र बताएंगे महाराज, पता नहीं यही बतलाएंगे विधि, अब इसके नाम से पूछ लेंगे अपन वहां चल करके। राजा गए वहां मुनिराज के सामने जाकर के बैठे, तो मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे थे। कुछ देर इंतजार किया, मुनिराज की आंख खुली तो कहा, इन्होंने प्रणाम किया और मुनिराज को कहा, मुनिराज मेरे पास एक जावत नाम का तोता है जाति का, और उसने आते आते एक प्रश्न किया है, कहा है कि मुनिराज से पूछना मुक्ति का उपाय क्या है। मुनिराज की तो आंख खुली थी, इसने एक वाक्य इतना कहा, इतनी देर में मुनिराज आंख खुल करके थोड़ा जहाँ बैठे थे आसन पे वहां पे नीचे उतरे और वो तो लेट गए आराम करने के लिए। राजा ने सोचा कि यार हो सकता है ध्यान से उठे हैं, इनके आराम का टाइम हो, इनके देखने का टाइम हो। तो राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यही जवाब देते हैं, वापस आएंगे कल, आएंगे कल आकर के पीछे। राजा ने चला गया वहां से उठकर। पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ? मुनिराज ने जवाब दिया कि नहीं मुक्ति का उपाय क्या है? नहीं नहीं कुछ आज तो कोई बात हुई नहीं, कल जाऊंगा तो कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूछूंगा, आज तो शायद थक रहे थे बहुत, या तो पहले तो ध्यान में बैठे थे, आंखें खुली उनकी तो मेरे नमस्कार करके बात कही, शायद हो सकता है उन्होंने बात सुनी नहीं हो, लेकिन वो अपने जगह से उतरे आकर से नीचे लेट गए आराम करने से थे, तो उनका आराम का टाइम हो गया तो मैं भी आ गया, मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, राजन चले गया अपने राजकक्ष में और पैरट जो था वो शेयर था, वो जिस कैद में बंद था पिंजरे में, उस पिंजरे में जो झूला लगा था जिससे वो बैठा रहता था झूलता रहता था, वो पिंजरे से नीचे उतरा और नीचे उतर करके लेट गया। ऐसे लेट गया कि जैसे हो ही नहीं, मतलब जो वहां सिपाही थे उन सिपाहियों ने सोचा कि ये तो मर गया, मर गया तो उन्होंने दरवाजा खोला, मर गया तो निकाल दे रहे इनको, इसको क्या कर सकते हैं, राजा के पास सूचना भिजवा दी। राजा भी दौड़ता हुआ आया, तो मर गया कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, ऐसे तो कभी पड़ता नहीं है इस तरह से, पैर ऊपर है ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है, दरवाजा खोल करके उसको निकाला फेंकने के लिए, तो फुर से उड़ गया और उड़ता उड़ता राजा से बोला कि राजन मुनिराज ने मुक्ति का उपाय बता दिया था, मैंने वो उपाय किया और देखो मैं मुक्त हो गया, तुम भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस उपाय को अपना लो, मुक्त हो जाओगे। राजा तो समझदार था, उसके तो समझ में आ गया मुक्ति का उपाय क्या है, आपके समझ में आया कि नहीं? मेरे भी समझ में आ गया, क्या उपाय बता दिया? वो उपाय बता दिया कि जिस जेल में रहते हो, जिस बंधन में रहते हो, जिस पिंजरे में रहते हो, जिस परिवार में, जिस राजपाट के बीच में रहते हो, रहो भले ही लेकिन ऐसे रहो कि मानो नहीं रहे हो, ये मुक्त होने का उपाय है, ये मुक्ति का उपाय है भाई साहब। देखो आप जवाब कैसा होता है बड़े राजों का, समझने वाले जीव समझ लेते हैं और नहीं समझने वाले जीवों को लगता है ये क्या होते हैं। यहाँ मुनिराज ने क्या उपदेश दिया? शिष्य पूछता है संवर का उपाय, पहले का दिमाग में बैठा था ना कुछ न कुछ कर्म धर्म ऐसा, मेरे कान से जवाब आया नहीं, क्योंकि पहले का बैठा हुआ है दिमाग में कुछ, उसको सर्टिफाइड करना चाह रहा है। अब वो जवाब आया नहीं तो कहता है बात पहली नहीं, जितनी तारीफ सुनी थी इनकी, जब इनसे जवाब सुना तब सारा मेरा तो उत्साह खत्म हो गया मेरा, तो क्या जवाब उपयोग उपयोग क्या उल्टपटांग बात करते हैं। लेकिन आचार्य कुंजकुंज स्वामी कहते हैं संवर प्रकट करने का एकमात्र यही उपाय, बाहर से घर में रहेगा, बाहर से परिवार के बीच में रहेगा, बाहर से संपत्तियों का मालिक भी दिखाई देगा, बाहर से व्यवहार में उस संपत्ति का लेन देन भी करेगा, बिजनेस करेगा, खरीदना बेचना भी होता रहेगा, ये सब बाहर में चलता रहेगा, तथापि अंदर में लिखते हैं भरत इसी घर में ही वैरागी वैरी भाषा है, घर में रहे या वन में रहे, बोलो जगत के जीवों को देख करके किसी से भी प्रभावित नहीं होवे, अलिप्त रहे, ये उपयोग का स्वरूप है, उपयोग सदा काल उपयोग में ही रहता है। हम कहाँ रहते हैं बताओ, हमारा रहने का स्थान कौन सा है, घर में रहते हैं कि अपने प्रदेशों में रहते
हैं, उसकी रस में हम अंदर घुटा जा रहा है, संसार के रस में घुटा जा रहे
हैं। हाँ ये हो रहा है, यहाँ रहते हुए जो जीव इससे अलिप्त रहते हैं ये मुक्ति की तरफ गान करते हैं। वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जिनके वचन ऐसे होते हैं कि देह भले ही रहे लेकिन जिनकी दशा देह से अतीत वर्ती है, कैसे ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, रोजाना बोलते तो है संतियापन, ये ज्ञानियों की वास्तविक वस्तु स्थिति है, उनकी अंतरंग दशा का चित्रण है, शरीर रहे लेकिन अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करे, देह चका यही दशा वर्ते देहाती, दशा कैसी वर्त रही है, देह की मौजूदगी में भी जिनकी दशा देह से अतीत वर्तती है, उन ज्ञानी के चरणों में हम अनगिनत वंदन करते, ज्ञानीना चरण माहो वंदन अभी, क्यों साहब क्यों वंदन कर रहे हो, आपको तो दशा है, देखते हमारे जैसे हैं भाई साहब लेकिन बात कुछ गजब की है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अद्वितीय प्रतिभा का धनी हो, दुनिया में ऐसा भी होता है, देखने में तो लगे यार क्या दम है, तो कुछ नहीं है क्या है, लेकिन असली बात यह है कि वो साधारण नहीं है, वो कोई अद्भुत है, विलक्षण सामर्थ्य वाला है, अद्भुत योग्यता वाला व्यक्ति है वो, ऐसा हो सकता है। दूसरे व्यक्ति ये क्या अनाड़ी का दिखता है, अनाड़ी का दिखता है लेकिन चलाएगा ना काम करेगा, जब बोलेगा तो पता लगेगा कि ये क्या है, ज्ञानी धर्मात्मा लोग पहचान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी व्यक्ति को देखा देख कर ये मूर्ख है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, शक्ल से बावड़ा दिख रहा है, तुम शक्ल से मत जाओ, अंदर में जो योग्यता बैठी हुई है वो बाहरी शक्ल से मिली, ज्ञानियों की शक्ल कोई स्पेशल नहीं होती, लेकिन अंतरंग दशा में जो श्रद्धान में ज्ञान में आचरण में चारित्र में प्रवृत्ति में कुछ न कुछ अंदर में स्पेशल होता है, ये स्पेशल बात। तो उपयोग कहाँ है बताओ, क्रोध में है कि नहीं, क्रोध में नहीं बिल्कुल, जरा यहाँ एक गाथा में तो इस तरह की बात कही कि क्रोध में उपयोग नहीं है, और दूसरी गाथा में ये बात कही कि उपयोग में क्रोध नहीं, क्या कहा, पहली बात कही क्रोध आदि में उपयोग नहीं है और दूसरी बात कही उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, ये बहुत वजनदार बात हो गई दोनों तरफा बात के लिए, साहब मेरे घर में तो संपत्ति नहीं है लेकिन किसी और के घर में तो हो सकती है, मैं किसी और के घर में तो जा सकता हूँ, हो सकता है कि नहीं ऐसा ऐसा, नहीं हो सकता इस तरह का, ऊपर ऊपर से देखने को नहीं समझ आती है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उपयोग मेरे में नहीं है, मतलब क्रोध मेरे में नहीं है, लेकिन मैं तो क्रोध में हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा समझता है कि कैसे होगा ये, कि दोनों बातें नहीं होगी। ये तो क्रोध जानने में तो आ रहा है कि क्रोध जो जानने में आता है वो क्रोध नहीं जानने में आता, ज्ञान ही जानने में आता। चलो मैं ऐसा कहता हूँ, कल जो हम दर्पण की बात कर रहे थे, दर्पण में जिस समय आप देखते हैं अपना चेहरा, तो उस समय चेहरा देखते हैं कि दर्पण देखते हैं? दर्पण ही देखते हैं, चेहरा नहीं देखते? दोनों साथ में देखते हैं। सच बात तो ये है कि दिखता तो दर्पण ही है, लेकिन मानते ये है कि चेहरा दिख रहा है, और दर्पण को
दिखता ही जाता
है, चेहरा दिख जाता है, दर्पण को देखने पर चेहरा दिख जाता है। भले अपना यहाँ लौकिक में प्रयोजन अपना चेहरा देखना हो, दर्पण देखना नहीं है। लौकिक में हमारा प्रयोजन दर्पण देखना नहीं है, चेहरा देखना है। लेकिन यहाँ आचार्य देवी कहना चाह रहे हैं कि सुनो, चेहरा देखोगे तो अलग अलग दिखेंगे, कभी कुछ और कभी कुछ, और दर्पण देखोगे तो स्वरूप दिखेगा उसका। खरीद के समय क्या देखना बोलो?
दर्पण।
खरीद के समय दर्पण देखना, और घर लाने के बाद क्या देखना? प्रयोजन है ना अलग अलग। तो दर्पण में चेहरा दिख रहा है कि दर्पण दिख रहा है? कि सुनो, यदि दर्पण में चेहरे दिखेंगे तो उससे तुम्हारा लोक व्यवहार चलेगा। दर्पण में चेहरे दिखने का मतलब हमारी ज्ञान पर्याय में झलकने वाले जीवों के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो लोक व्यवहार चलेगा, और यदि अपने आप को उन गेहूं से भिन्न आत्म तत्व अनुभव करेंगे तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा, लोक से मुक्ति हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए बोले? साहब ये उपयोग में उपयोग तो इतना खतरनाक हो जाएगा क्या कि हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। हमने पूछा है चाय में चीनी डालनी है, कौन से डब्बे में है, आगे से उपयोग में उपयोग है, क्या करें बोले? चीनी के डब्बे की जगह हमने नमक का डब्बा उठा लिया, हमें पता नहीं था, और आपसे पूछा कि ये डाल दो क्या, आपने कहा उपयोग में उपयोग है, अब क्या होगा बताओ? किसी चीज की खबर पूछी हमने कि ये कहाँ है, किसी वस्तु के बारे में हमने कहा चीनी कहाँ है, बोले चीनी चीनी में। हमने कहा चाय की पत्ती है आपके यहाँ, चाय की पत्ती डालनी है इसमें दूध में, चाय बनानी है, कहाँ रखी होगी, बोले क्या पढ़ लीजिए, आपने समझदार नहीं पढ़ा, तो पढ़ा तो है, क्या है बताओ हमारे को, हमें साथ का मर्म क्या है? उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि है, चाय में चाय है, चीनी में चीनी है, सब पूछते हो कहाँ रखी है, समझ लो चाय में चाय है। भैया चाय में चाय है कहने से व्यवहार नहीं चलता, मैंने व्यवहार चलाने के लिए लोक व्यवहार के लिए हमें इस तरह के प्रयोग करने ही पड़ेंगे। लोक व्यवहार ज्ञान पर्याय के आधार पर नहीं, ज्ञान पर्याय के विषय के आधार पर चलता है। लोक व्यवहार ज्ञान के विषय के आधार पर चलेगा, और मोक्ष मार्ग वो विषय के आधार पर नहीं, या एक स्वभाव के आधार पर चलेगा। ये अंतर है दोनों, किसको देखेंगे तो क्या होगा बताओ? यदि आप ये देखते हो तो संसार, और ज्ञायक देखते हो तो मोक्ष, दोनों चीजें मौजूद है। आपको क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि में क्या चलता है? दृष्टि बदलती, दृष्टि बदल जाती है, सिर्फ दृष्टि बदलती है, पूरी दुनिया बदल गई, सिर्फ सोच बदल गई, सिर्फ मान्यता बदल गई, दृष्टि बदली है सब बदल गया। उस बालिका ने किसी व्यक्ति में अपनापन किया, अब दुनिया बदल गई, पता अब क्या होगा? आज जिसने अपनापन किया सब कुछ सुख दुख का अनुभव सब वहीं से होने लगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी दुनिया बदल जाती है, तमने दृष्टि यानी जीव अब तक दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था? कि उपयोग को कर्म में नौकर में मारा। अब क्यों नहीं दुखी है? क्योंकि कर्म और नौकर्म में अपने उपयोग को नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि अपने उपयोग को उनमें मानता है, सम्यक दृष्टि ही उपयोग को उपयोग में मानता है। तो देह के प्रति अपनापना नहीं होने से वो सम्यक दृष्टि यानी जीव अत्यंती आनंद का अनुभव करता है। ये तो आनंद का मार्ग है भाई, अनुभव करने के लिए है ये बात, कहने के लिए नहीं, शब्दों के लिए नहीं। आत्मा आत्मा पढ़ा तो बहुत है, अनुभव हुआ तो इस चीज का। उपयोग जीव का लक्षण है, ये बात कोई नई नहीं है हमारे लिए। जीव का लक्षण उपयोग है, ये पढ़ी है बात। उपयोग वो लक्षण सत्ता सूत्र ने दिया है, हुआ है। जीव का लक्षण उपयोग है, सातवें आठवां सूत्र है, दूसरे अध्याय का सातवा आठवा तो दस बारह नंबर का होगा। तो क्या कहा? उपयोग में उपयोग में जीव को कैसे पहचाने? बोले तो उपयोग लक्षण से पहचाने। उपयोग के साथ में जीव का आधार आधे संबंध है, इसलिए उपयोग तो जीव का है। समझना, उपयोग में उपयोग है, इसका मतलब जीव का उपयोग है। उपयोग में उपयोग का मतलब मैंने तीन अर्थ किए थे उपयोग में उपयोग के। क्या क्या थे रमेश भाई बताओ, क्या क्या बातें कही थी मैंने? तीसरा पर्याय में प्रवचन सार सोने लिखा था, अभिन्न षटकारकों की चर्चा की, स्वयंभू अभी जो गाता है ना प्रवचन सार ने, क्या कहा है वहाँ? उस पर्याय के षटकारक अपने स्वतंत्र हैं। पर्याय वाली उस गुण में से आती हो, लेकिन उसका आधार क्या है बताओ? ये इतनी स्वाधीनता बता रहे हैं यहाँ, एक एक वस्तु का परिणाम इतना स्वाधीन है कि किस वस्तु को किधर से किधर जाना है, ये बहुत स्वतंत्र स्वाधीन योग्यता पर निर्भर करता है। देखो एक आपको बहुत स्थूल उदाहरण से बात करके समझाता हूँ। एक व्यक्ति बिजनेस करते समय 100 रुपए की खरीद करके कोई चीज लाया, उसने अपने दिमाग में ये बात सोची कि इसको 500 रुपए तक बेचूंगा। क्या मुकुंद भाई? 100 रुपए की चीज खरीदी थी, बोले 500 तक बेचूंगा इसको, लेकिन यदि कोई खरीदने वाला अच्छा नहीं मिला मान लो, तो गिरी से गिरी हालत में 200 से कम तो नहीं दूंगा, मतलब दुगने पैसे तो कमाऊंगा। बोलो बराबर है? अरे 500 तक बेचने की कोशिश करूंगा और दाम गिराते गिराते 200 तक आ सकता हूं मैं, 200 से नीचे नहीं उतरूंगा, 200 में तो एक चीज बेच ही दूंगा। दुकान से बैठा है, 100 रुपए की खरीद थी, मिनिमम 200 में बेचना था, मैक्सिमम 500 में बेचना था, ठीक है। दुकान पे ग्राहक आया तो उसने पूछा कितने की है, तो दुकानदार क्या कहेगा? बोले 500 रुपए की है। बोले 500 तो ज्यादा है, सही लगाओ। तो इसने कहा कि तुम ही बता दो। तो उसने कहा कि 300 रुपए में दूंगा मैं तो। अब ये सोचता है कि 500 के डायरेक्ट इसने 300 बोल दिए, और यदि मैं 300 में हाँ कर दूंगा क्या तो लगेगा ठीक नहीं है। फिर बोलता है नहीं 300 तो नहीं भाई साहब, 400 लगेंगे। दुकानदार है ना, एकदम कैसे कहे? तो वो सामने वाला ये कहता है कि नहीं मैं तो 300 नहीं दूंगा, और देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो, अब मैं तो जा रहा हूं। और इसने कहा 350 लगा दूंगा लास्ट, और वो नहीं माना और वो चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 300 रुपए देने को तैयार था और तुम 200 नकदी करके बैठे थे, सामान बेचा क्यों नहीं? बात लोग की नहीं है, उस वस्तु के जाने की अपनी योग्यता होगी तो जाएगी भाई साहब, तुम कितना भी नकदी करके बैठोगे। जो भी था अंदर की सच्चाई जो भी हो, लेकिन असली कारण क्या है कि तुम 500 में बेचना चाहते हो कि 200 में बेचना चाहते हो कि 200 में तो निकाल ही दूंगा ये नक्की करके बैठे, उसके बावजूद भी 300 में भी नहीं दे पाए। बोलो क्यों नहीं दे पाए? तुम तो 200 सोच के बैठे थे ना, 200 तक भी दे दूंगा, 300 मिल रहे थे ना, फिर क्या हुआ?
निकलनी नहीं और मजा नहीं।
हाँ, वस्तु के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की अपनी योग्यता है, उस योग्यता के बिना काम नहीं चलता। तुम कितनी भी प्लानिंग करते रहो, तुम कितना भी सोचते रहो कि हम ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन एक एक वस्तु का परिणाम स्वाधीन है। वो वस्तु अपने परिणमन करने में, वो माल बिकने में, वो माल ग्राहक के पास जाने में उसकी अपनी योग्यता है। और सुनो गजब की बात, तुम तो देना चाहो और जाए नहीं, और दे भी दो तो भी घूम फिर आए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मुझे घटना याद आ रही है, कहानी। एक सेठ जी थे, बहुत वैभव संपन्न थे, एक ही पुत्री थी उनकी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे संपन्न घर में अच्छे लड़के, वैभव संपन्न लड़के को देख करके विवाह कर दिया। पुत्री का विवाह हो गया, सेठ जी से गाड़ी जी शांति से रहने लगे, वो अपने घर में रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो लड़की का पति था वो गलत चौक में पड़ गया। धीरे धीरे शराब वराब पीने लगा, इधर उधर व्यसनों में उलझ गया, तो संपत्ति सब चले, सब खत्म हो गई। अब खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसी हालत हो गई। सेठानी ने पूछा सेठ जी से कि थोड़ी अपने से हेल्प करनी चाहिए। सेठ जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, सबको अपने अपने भाग्य से मिलता है, क्या दिमाग लगाती है, कुछ नहीं है, उनका उनका भाग्य सही नहीं है, अपन क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है बात, अब अपनी बच्ची है, तकलीफ पा रही है। एक दिन क्या हुआ, दामाद जी घर पे आए मिलने के लिए और सेठ जी घर पे नहीं थे। जब सेठ जी घर पे नहीं थे तो क्या किया उसने, सेठानी ने सोचा कि अच्छा मौका है किसी तरह से हेल्प करने की, वैसे मैं दूंगी तो लेंगे नहीं। तो उसने कहा कि आप बैठो, सेठानी जी ने घर में लड्डू बनाए और लड्डू में सोने की मोहरें रखी, 2 किलो लड्डू बनाए और लड्डू के अंदर सोने की मोहरें, एक एक लड्डू के अंदर एक एक सोने की मोहर उसके अंदर बांध करके लड्डू तैयार कर दिए। बड़े सामाज जी आप आए हो, ये मिठाई ले जाओ घर पर, 2 किलो लड्डू दे दी। अब ये दामाद जी निकले, 2 किलो लड्डू लेकर के जा रहे थे, उनके दिमाग में आया यार क्या वजन लेकर के जा रहा हूँ, 2 किलो लड्डुओं का वजन। थोड़ी सी दूर घर से निकले ही थे कि सामने एक हलवाई की दुकान थी, फिर सोचा यार इसको भेज देता हूँ, पैसे के पैसे मिल जाएंगे और इसका वजन भी नहीं ले जाना पड़ेगा। उसने 2 किलो लड्डू हलवाई को बेच दिए, पैसे ले गए दामाद जी। जब सेठ जी लौट करके आए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो घर चल रहे हैं, कुछ मिठाई ले चले। उसने 2 किलो लड्डू हलवाई से खरीदे और वो पैकेट रखा हुआ था हलवाई ने, वही 2 किलो लड्डू सेठ जी को दे दिए, वो घर ले आए। घर आने के बाद में सेठानी ने जब लड्डू देखे तो खोला तो उसमें तो मोहर, सेठानी की सब बात समझ में आ गई। उसने सेठ जी को सब बात बता दी तो सेठ जी ने क्या कहा कि देख मैंने कही थी क्या, भाग्य जिसका होगा उसके पास संपत्ति अपने आप आएगी और जिसके भाग्य में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगी। देख ये जो तूने सोने की मोहरे दी थी ये दामाद जी के भाग्य में तो थी नहीं, ये हलवाई के भाग्य में भी नहीं थी। सावन ने दिया, तेरे परिणाम बहुत अच्छे थे, भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी भावना और अपने परिणामों से क्या होता है उसके भाग्य में नहीं होते। बोलो लौट करके आ जाती है चीज, वस्तु का जो परिणाम है ना वो आपके विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता। आप तो सोचते हैं हम इनका सहयोग करते रहे, हम इनका सहयोग करते रहे, हम इनको दे दे रहे, अरे तुम कितना भी देने का सोचो सामने वाले के भाग्य में नहीं है और वस्तु की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत इसको इधर से उधर नहीं ले जा सकती। क्या स्वाधीन परिणाम है भाई वस्तु का, ये वस्तु स्वरूप इतना स्वाधीन है, इतनी स्वतंत्रता है कि तुम तो देखे जाओ बस ज्ञाता दृष्टा बनके, और ज्ञाता दृष्टा से थोड़ा बहुत भी फेरफार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। ये ज्ञान पर्याय की स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। पिक्चर देखने के लिए बैठा है तो ज्यादा विकल्प मत कर, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है, तो डायरेक्टर का पिक किया हुआ है जो उसने नकली दिया वही होगा। देना मतलब कि विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है, तू तो क्या कर कि बस जो डायरेक्टर ने पिक किया है उसको सामने बैठ करके क्या होगा उसने विकल्प मत कर, जाता दृष्टा भाव से देख के जा बस बैठा बैठा। बोलो समझदारी किस चीज में, विकल्प करने में, आकुलता करने में, और इंटरवेल के पहले किसी ऐसी जगह पर छोड़ा था अब ये 5-10 मिनट 15 मिनट का जो इंटरवेल है क्या क्या होगा यार, ये तो कर दिया यार हो गया क्या होगा बोलो, अगर ये घड़िया नहीं चालू क्यों नहीं कर रहे हैं चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, वो देखते हैं बिल्कुल तेरे विकल्पों से नहीं होगा कुछ भी। ऐसे ही कह रहे हैं तेरी ज्ञान पर्याय का ये क्या बन रहा है, यहाँ तक फिक्स है जनागम तो ये कहता है, ये जो तेरा ज्ञान है क्षयोक्षम की पर्याय, तेरी ज्ञान पर्याय का विषय क्या बनेगा, क्षयोक्षम ज्ञान पर्याय का विषय ये विषय भी नक्की है। किताब मैं चाहूँ जिसको जानू और चाहूँ जिसको नहीं जानू, बोलो मैं चाहूँ जिसका प्रवचन सुनू और चाहूँ जिसका नहीं सुनू, ये तो मेरे हाथ में है ना। यदि मेरे लैपटॉप में 20 विद्वानों के प्रवचन है तो ये तो मेरी इच्छा है पंडित जी, मैं चाहूंगा जिसको सुनूंगा 20 में से सब अवेलेबल है, जिसका चाह उसका सुन लिया सुन रहे, जिसका चलने की योग्यता होगी उसी का चलेगा, तेरे चाहने से नहीं चलेगा। तू सोचता है ऐसा कर दूं ये कर दूं ये कर दूं, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल अपने माइंड में ये बात सेट रखना बिल्कुल। अरे साहब ऐसा प्रवचन करूंगा ऐसा समझाऊंगा कि तू बोल ही नहीं सकता, क्या पूछ रहा है अपने दिमाग में, भाषा वर्गना का करता नहीं है तू, ये बात अपने दिमाग में सबसे पहले रखना, जो वाणी निकलनी है जैसी निकलनी है जो शब्द निकलने हैं ये भाषा वर्गना रूप क्यों कौन सी भाषा रूप परिणमन करेंगे ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता है, बोलना क्या चाहता है और निकलता क्या है, सोचता क्या है और होता क्या है, अब बोलो कितने विकल्प काम करे इसमें, कोई विकल्प काम नहीं करता, तुम्हारा कोई विकल्प काम नहीं करता, विकल्प तो बहुत चलते हैं हमारे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, काश ऐसा कह देते। अब देखो घटी हुई घटनाओं के बारे में भी अब उससे तो परिवर्तन हो नहीं सकता, एग्जाम के बारे में बिजनेस के बारे में अब वो बाद में पछता रहा है वो व्यापारी, यार मेरे को 300 में दे देना चाहिए था यार मैं भी मूर्ख हूँ, 100 के 300 मिल रहे थे 200 सोचे थे मेरे को 300 में यही देना चाहिए था, तेरे सोचने से नहीं होगा भैया, तू कितना ही पूछता रहे कितना ही पछता सकता रहे, बोल अब सोचता है कि कोई दूसरा ग्राहक आएगा तो मैं 300 में दे दूंगा, अब दूसरा ग्राहक आया बोले कितने की है, बोले 500 की, बोले 300 में नहीं दोगे, इसको पहले वाला याद आ रहा है ये सोच रहा है कहा ले जा 300 में ले जा, कितने का और उसका दिमाग घूम गया यार मैंने 500 से 300 लगाया और ये कह रहे ले जा जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है वो नहीं लिया और वो चला गया, बोलो क्या करे,
वो जाने की जन्म
वो जाने की योग्यता नहीं है भैया, तू सोचे कि मैं दे दूं मैं हाँ कर दूंगा तब तो चला जाएगा हो जाएगा, वस्तु की परिणमन की अपनी योग्यता, ये योग्यता कितनी गजब की चीज है, जब हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात करते हैं जब हम वस्तु की योग्यता की अपेक्षा से बात करते हैं कितने निर्वाण हो जाते हैं, एक एक बाल का परिणमन कितना स्वाधीन है, योग्यता है उसकी, कण कण की स्वाधीनता समझ में आती है। ये परम स्वाधीनता की चर्चा करने वाला ये जैन दर्शन है अपना, अपना जैन धर्म ऐसी स्वाधीनता की चर्चा करता है, स्वाधीन सुख, स्वाधीनता में सुख है, स्वाधीन आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। बोलो गुजराती में बोलते हैं आप कुछ और, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद स्वाधीन सुख जहाँ भी प्राप्त हो, निर्दोष होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए, स्वाधीनता में सुख है। और इतनी स्वाधीनता की चर्चा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जिस स्वाधीनता की पराकाष्ठा में जाकर के बात करते हैं, इतनी पराकाष्ठा और इतनी उत्कृष्ट स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं कि एक पर्याय का दूसरे पर्याय से संबंध नहीं, अनादिकाल से लेकर आज तक मिथ्यात्व पर्याय की श्रृंखला चली आ रही थी और अगले समय की पर्याय में झटके से तमय दर्शन की प्राप्ति और अनंत काल तक तमय दर्शन, ये क्या हो गया, ये क्या बदल गया बताओ साहब। उन पर्यायों के कुछ तो संस्कार बनने दृष्टि के लिए होंगे, कोई संस्कार नहीं होता, कुछ तो संस्कार नहीं, ये स्वाधीनता है। वो पर्याय अपने में है, वो ज्ञान पर्याय ज्ञान पर्याय में है, ये स्वाधीनता बोलो, ये उपयोग में उपयोग कहना चाह रहे। उस पर्याय के षट कारक अपने हैं, वो पर्याय अपनी योग्यता से, वो पर्याय अपने षट कारक से, अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है। इसका नाम ज्ञान पर्याय, ज्ञान पर्याय में है, इसे उपयोग में उपयोग कहने में आता है। ऐसी बात कह रही है, ज्ञान पर्याय में क्या आएगा भाई साहब, आपके सोचने से ज्ञान पर्याय में विषय बनते हो तो स्वप्न कैसे आ जाते हैं बोलो। क्या कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके सोचा होगा यार आज तो मैं सपने में वो मूवी देखूंगा, देख सकते हैं यार दिन भर तो टाइम मिला नहीं, मैं देख रहेगा और देखी हुई तो थी आज मन बहुत था, आज एक काम करता हूँ सो रहा हूँ, अब नींदों में सपने में वही मूवी देखूंगा, कुछ नहीं देख सकता। ज्ञान पर्याय का विषय क्या बनेगा, ये ज्ञान पर्याय की स्वाधीनता है, उस पर्याय की स्वाधीनता है, उस पर्याय का विषय क्या बनेगा, कितना विषय बनेगा, उस पर्याय में कैसी योग्यता होगी सोचो आप, माने दुनिया की सब चीजों में लागू हो जाएगी ये बात पर्याय संबंधी, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता की बात है ना, और वस्तु स्वरूप की बात करते हैं और वस्तु स्वरूप का लाभ एक जैसा होता है, स्वरूप नहीं बदलता वस्तु का कभी भी। एक और मार्मिक बात कहता हूं, ज्ञान गुण की प्रतीत में ज्ञान पर्याय निकलती है बराबर, दर्शन गुण की प्रतीत में दर्शन पर्याय निकलती है, श्रद्धा गुण की प्रतीत में श्रद्धा पर्याय निकलती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज्ञान गुण की पहली समय की पर्याय और ज्ञान गुण की दूसरे समय की पर्याय, इन दोनों के विषय यदि अलग अलग हैं तो उसका कारण क्या
है, स्वतंत्र है,
यदि वो उस पर्याय का कारण उस ज्ञान गुण को माना जाए, ज्ञान गुण की पर्याय है ना, तो फिर ज्ञान गुण तो हमेशा एक जैसा है, उसकी पर्याय हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अभी जैसे हमारे जानने की बात करें, अभी हम लोग बैठे हैं, अभी मैं ज्ञान के पांच वेदों की बात नहीं कर रहा, मतिश्रुता भी मैंने पर ये केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा, इधर उधर क्योंकि वो तो बहुत भेद हो जाएंगे, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप अभी स्वाध्याय में प्रवचन में बैठे हैं, अभी आप नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं, अभी आप दुकान पर बैठे हुए हैं, तो आपके उपयोग में अलग अलग विषय झलक रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट में हमारी ज्ञान की पर्याय प्रति समय नई नई हो रही है, हर समय की ज्ञान की पर्याय का विषय अलग अलग कैसे हो रहा है, अभी तो सुन रहे हैं ना अपन प्रवचन, चलो कोई बात नहीं, प्रवचन नहीं सुन रहे होते मान लो और शांति से आग बंद करके बैठे होते तो ज्ञान पर्याय का विषय अलग अलग बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, ही स्वतंत्रता, ही स्वतंत्रता, ज्ञान स्वतंत्रता है, वो ज्ञान पर्याय क्रोधादित से तो भिन्न है ही, वो ज्ञान पर्याय नवकर्म से तो भिन्न है ही, वो ज्ञान पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के उदय से भी भिन्न है, यानी कर्म से भी भिन्न है, वो ज्ञान पर्याय ज्ञायक आत्मा से भी भिन्न है, और वो ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण के भी अधिक नहीं है, वो ज्ञान पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार परिणाम करती है। क्या उत्कृष्ट स्वाधीनता की चर्चा कराएगा, उपयोग में उपयोग। और समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? जहाँ इतनी स्वाधीनता हो कि एक समय की ज्ञान की पर्याय पिछली ज्ञान की पर्यायों के लिए भी स्वतंत्र न हो, जहाँ इतनी स्वाधीनता हो कि एक समय की ज्ञान की पर्याय श्रद्धा चारित्र आदि दूसरे गुणों की पर्यायों की पराधीनता नहीं रखती हो, उस जगह पर हम ये सोचे कि पत्नी मेरे हिसाब से चले, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो बात ऐसी हो गई मैंने यहाँ कई चीजें नहीं कि जेब में 100 रुपए है और बात कर रहा है 1000 रुपए की, लाखों रुपए की, तेरे पास में योग्यता तो है नहीं, जितनी योग्यता होगी काम तो उतना ही होगा ना, तो क्या सोच रहा है बता, ये हो पाएगा? तेरे विकल्पों से कुछ नहीं होता, काम तो इतना ही करने में समर्थ नहीं है, 2 किलो वजन उठाने में तो कंधा दर्द करने लगता है, तो कहता 20 किलो उठाऊंगा, पागलों जैसी बात होगी। थोड़ा सा काम तो होता नहीं है, 4 लोगों का खाना घर में बनाने के लिए कहूँ तो बनता नहीं है, तो फिर 40 लोगों का खाना मैं बना दूंगा, बात जचती नहीं है ना, ये कैसे होगी ये बात। हमने कहा ज्ञान पर्याय इतना सा तो करता नहीं है, और ये कहे नहीं मैं तो दुनिया का करता हूँ, बिजनेस का करता हूँ, काम धाम का करता हूँ, कैसे होगा करता भैया, विचार तो करे बस। एक एक कण कण स्वाधीन है, प्रत्येक परमाणु परमाणु स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। ये महावीर स्वामी का संदेश है, जिस संदेश में सर्वोदयी देशना है, सर्व का उदय हो ऐसी देशना देते हैं। तो ये जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं में देखो आप क्या बात कही गई है, हम उसी करते हैं इन दाताओं की चर्चा को, क्या क्या बात कही गई है, आत्म ख्याति गीता की चर्चा कर रहे थे हम।
जो बड़े जो गाथा
नहीं भाई जी की, अच्छा भाई जी की पंक्तियाँ है महावीर वंदना के नाम से, एक स्तुति है, अच्छी पंक्तियाँ है, बहुत सुंदर मार्मिक बातें कही है उन्होंने अपने, ठीक है। जो मोह माया मान मत्सर मरण उसकी पंक्ति है, उसमें नीचे रखी है स्वाधीनता की चर्चा है। देखो जरा मैं यहाँ अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, ठीक है ना, आधार आदि संबंध वगैरह की जिसमें चर्चा की, भिन्नत्व की जिसमें चर्चा की, मैं वो पंक्तियाँ यहाँ पढ़ता हूँ। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न, प्रदेश मतलब क्षेत्र, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, दोनों का निवास स्थान ही अलग अलग, एक मकान जयपुर में है और एक मकान यहाँ समझ लो मैं हमी में है, पर ये कहता है मैं दोनों मकान को छोड़ करके एक कर लेता हूँ। वो कह रहा है कैसी बात कर रहा है, दोनों आगे बगल के मकान हो तो छोड़ करके एक बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन एक जयपुर में है, एक मियामी में है या अमेरिका में, ये कैसे बनेगा बताओ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के प्रदेश अलग अलग है, एक फ्लोरिडा में और एक समझ लो वहां ऑरलैंडो में, दोनों प्रदेश अलग अलग है, या तो दोनों ही फ्लोरिडा प्रदेश में, मान लो ऐसा दोनों प्रदेश अलग अलग हैं तो वो एक नहीं हो सकता। इसी तरह से कहना चाह रहे हैं जिन दो वस्तुओं को तुम मिलाने की बात करते हो, ये दो वस्तुएं एक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका अर्थ ऐसा भी समझना किसी वस्तु की कोई दूसरी वस्तु मालिक नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है इसका मतलब मैं आत्मा हूं, और ये जो संपत्ति डॉलर जो दिखते हैं क्या, ये क्या है? बोले ये दूसरी वस्तु है, और एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, इसका मतलब संपत्ति मेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न, इसलिए उसमें एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, एक सत्ता नहीं है, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब उनमें परस्पर आधार अधेय संबंध क्या, उन दोनों वस्तुओं में एक दूसरे के साथ में आधार अधेय संबंध भी हो ही नहीं सकता। आधार अधेय संबंध नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हमने आपसे पूछा कि दूध कहाँ है, तो आपने कहा तपेली में, बर्तन में, भगोनी में। दूध कहाँ है कि भगोनी में, तो दूध भगोनी के आधार से है या नहीं? दूध भगोनी के आधार से है या नहीं बताओ? तो लगाओ ये फार्मूला कौन सा कि भगोनी और दूध ये दो वस्तुएं हैं कि एक ही है? वस्तुएं दो होती है तो उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, और जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उसमें आधार आधेय संबंध नहीं होता। तो उनका आधार आधेय संबंध नहीं है। जिस तरह से तुम ये समझते हो कि भगोनी में दूध है, उसी तरह से तुम ये भी समझते हो कि शरीर में आत्मा है, वही प्रॉब्लम है बिल्कुल। जिस तरह से दूध भगोनी का नहीं हो सकता, उसी तरह से शरीर में रहता हुआ भी आत्मा शरीर का नहीं हो सकता, शरीर से भिन्न है। शरीर और आत्मा ये दो वस्तुएं हैं, और दो वस्तुएं होने से दोनों के प्रदेश भिन्न है, और प्रदेश भिन्न होने से आधार आधेय संबंध नहीं बन सकता, इसलिए आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहता। शरीर में रहता हुआ आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहता। एक प्रदेश दिखाई देते हुए, एक क्षेत्रांग का संबंध दिखते हुए भी आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहता, आत्मा आत्मा के आधार से रहता है, शरीर शरीर के आधार से रहता है। क्या जब बात करते हैं बोलो, क्या आधार आधे संबंध की बात कर रहे हैं? देखो अब परस्पर में आधार आधे संबंध भी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, प्रतिष्ठा रूप कहकर ये कहना चाहते हैं, दृढ़ता से ही आधार आधेय संबंध बनता है। हर वस्तु का अपने स्वरूप के साथ में ही आधार आधेय संबंध बनता है। सब वस्तु अपने अपने में रहती है, ये मार्मिक बात कहना चाहते हैं। तीन पंक्तियां और है, देखो जरा इस टीका की। जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, अभिन्नत्व ज्ञान से, क्योंकि क्रोध से प्रदेश भिन्न बतलाने ना, अभी देखो शरीर से प्रदेश भिन्न तो ख्याल में आते हैं, कई लोगों से प्रदेश भिन्न ख्याल में आते हैं, दूध और भगवानी के प्रदेश भिन्न ख्याल में आते हैं, लेकिन जब क्रोध की और ज्ञान की बात करते हैं तो पचती नहीं है बात एकदम। क्रोध की और ज्ञान की बात इसलिए नहीं पचती क्योंकि दोनों आत्मा में पैदा होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है ज्ञान, ज्ञान में ही है, और क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित में क्रोधादि क्रोधादि में ही है। ज्ञान ज्ञान में ही है और क्रोधादि क्रोधादि में ही है। ये जो आदि शब्द के प्रयोग किए हैं ना, ये क्रोध आदि के अंदर सारे विभाव भाव ले लेना, सारे वस्तुओं का परिणमन ले लेना, सारे परद्रव्य ले लेना, सारी जड़ की क्रियाएं ले लेना, दया दया में है, दान दान में है, पूजा पूजा में है, उपवास उपवास में है, व्रत 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 में है, ज्ञान व्रत में नहीं है, ज्ञान उपवास में नहीं है। ज्ञानी ज्ञान क्रिया करते हैं, हमारे ज्ञानी व्रत आदि नहीं पहुंचते, ज्ञानी उपवास नहीं करते, ज्ञानियों के उपवास होता ही नहीं है, क्योंकि उपवास जड़ की क्रिया है और ज्ञानी ज्ञान क्रिया करते हैं। ऐसा भेद विज्ञान यदि बढ़ते हैं तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं संवर कैसे नहीं होगा, ये संवर प्रकट करने का उपाय है। ऐसा संवर हम सभी के जीवन में अवस्था में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को जान
देता। एक प्रश्न मुझे टेप करना है।
हाँ,
अभी आपने जब कहा कि जो जानन क्रिया है,
हाँ,
वो ज्ञान से अलग
है, नहीं
ये तरीका
नहीं,
आपने क्या कहा,
जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न है,
अभिन्न,
या जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न है और क्रोधादि क्रियाएं क्रोधादि से अभिन्न है।
जय स्वरूप समझा।